पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। यह जरूरी है कि हमें भगवान श्री राम को हृदय में बिठाना है तो हनुमान जी का गुणगान हो, और आज विशेष रूप से हनुमान जयंती में यह लाभ हमें कई संतों के आशीर्वचन से मिलेगा। ये प्रेमपुरी आश्रम का हम सब श्रोताओं का सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी, आज से उनका प्रवचन का शुभारंभ होना था, वो कल से होगा। आज हनुमान जयंती ही के उपलक्ष्य में पूरा हनुमान चरित्र और हनुमान गान यहां से होगा। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि पूज्य महाराज जी 7:30 से 8:30 के उनके दरमियान हमें यही हनुमान जयंती का आनंद करवाएंगे। तत्पश्चात सर्वेश चैतन्य महाराज, जिनके आशीर्वचन और प्रवचन का भी हमें थोड़ा लाभ मिलेगा। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि सतनाम जी संत बहुत ही सुंदर इससे शास्त्रीय संगीत के माहिर हैं, वह पधारेंगे और उनको हम 8:45 के बीच से 9:30 तक उनके जो मधुरवाणी है भजन के माध्यम से उनको हम आनंद लेंगे। सायं प्रवचन में भी बहुत ही सुंदर इससे 5:30 से 7:30 तक संतों के आशीर्वचन दर्शन एवं विशेष रूप से मोहनानंद जी महाराज पधारेंगे और वो हम आनंद करेंगे। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाळुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। आइए प्रेम से भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए, तुलसीदास जी का स्मरण करते हुए, चौपाइयों के माध्यम से हनुमान जी का अपनी इस सुंदर हनुमान जयंती के अवसर पर आवाहन करें।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जा पर कृपा राम की होई, जा पर जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर होई ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई कहे हनु हे कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई कहे हनु जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई जब जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जगज्जननी अम्बे माता की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय आनंद के ये क्षण परम पावन दिव्य भूमि स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये प्रांगण ये भवन जहां पर महापुरुषों के परम प्रताप का पूर्ण प्रकाश प्रकाशित रहता है ऐसे सुंदर इस स्थान में हम लोग बैठकर आज श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव या जयंती जो भी कहें मना रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को इस विषय में भी शब्दों में भी बड़ा डाउट हो जाता है बोलते हैं जन्मोत्सव कहो जयंती मत कहो इसकी चर्चा बाद में करेंगे पहले तो हमारा आपका मिलन जो है एक तारीख को होता था और इस बार जो है डबल एक हो रहा है तो अप्रैल फूल के दिन फूल बनते थे हम लोग लेकिन भगवान ने अब की बार असीम कृपा की कि ज्ञान इनाम अग्रगण्यम भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग एक मिल रहे हैं तो हम लोगों की बहुत दिन के पागलपन को हनुमान जी ने एक बार में जैसे लंकिनी को सुंदरकांड में आता ना मुठिका एक महा का पिहानी रुधिर भमत धरनी ठनमनी एक ही मुष्टिका में जो है लंकनी को हनुमान जी ने ढेर कर दिया और उसको ज्ञान की प्राप्ति खाली मारने से जो है लंकनी ढेर नहीं हुई बल्कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी देखिए इतने सालों से फूल बन रहे थे और अब की बार हनुमान जी की कृपा हो गई और एक ही मुष्टिका में हमारा कल्याण संभव है वैसे अगर चाहें तो क्योंकि बहुत सुंदर वर्णन आता है जब हनुमान जी जिस समय मिलन हुआ, ये आपको सुंदर कांड के समय सुनाया था हमने कि रावण की लंका इतनी सुरक्षित थी, हम लोग सिक्योरिटी की आज बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, लेकिन रावण की लंका की सुरक्षा की आप कल्पना कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हनुमान जी ऐसे बुद्धिमान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जिनको कहा जाता, ऐसे बुद्धिमान हनुमान जी ने भी लंका में प्रवेश करने के पहले 10 बार विचार किया कि किस प्रकार से प्रवेश करें। तो उन्होंने विचार किया कि रात्रि का समय होना चाहिए जिससे मुझे कोई देखे नहीं, और रात्रि के समय में भी मशक समान मच्छर बन गए, मशक समान रूप कभी धरी। तो जिस समय महाराज हनुमान जी ने रात्रि के काल में मशक के बराबर, मच्छर के बराबर अपने रूप को धारण किया, तो भी महाराज जरा कल्पना कीजिए कि रावण की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की रही होगी कि लंका के अंदर, उसके महल की बात नहीं हो रही, लंका पूरे राज्य की बात हो रही, यानी लंका के अंदर रावण की आज्ञा के बगैर मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। हनुमान जी मच्छर बनकर लंका में प्रवेश करना चाहते थे, और उसी समय लंकिनी शक्ति जो थी रावण की, क्योंकि वेदज्ञ भी था, तंत्र शास्त्र का भी ज्ञाता था, तो उसकी परम तंत्र शास्त्र की जो साधना थी उसके द्वारा उसने ऐसा जो है अपनी सुरक्षा कवच को तैयार किया था जिसको हम लोग लंकिनी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे सुरक्षा कवच के द्वारा हनुमान जी रोक लिए गए। लंकिनी कहती है हनुमान जी से, मोर आहार जहां लगी चोरा। बोले महाराज कहां जा रहे हो? हनुमान जी को विश्वास नहीं हुआ कि इस मच्छर के वेश में भी मुझे पहचाना जा सकता या मुझे रोका जा सकता। बोलिए इस विश्व में कहीं आपको ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देती है कि मच्छर को भी जो है रोक लिया जाए? तो जरा कल्पना कीजिए रावण के विज्ञान की महाराज है। तो हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने फिर अपने रूप का परित्याग कर दिया, मशक रूप से फिर कनक भूदराकार शरीरा आ गए महाराज, अपने रूप में आ गए हनुमान जी, और वार्तालाप शुरू हुआ महाराज। उनका मोर आहार जहां लगी चोरा, तो हनुमान जी ने कहा कि लो फिर चोर को जब इन्वाइट किया है तो हमारा जो है स्वीकार करो उपहार। तो हनुमान जी ने लंकिनी को एक मुष्टिका, मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरणी ठनमनी, रुधिर का बमन करते हुए लंकिनी वहीं पे ढेर हो गई, और पुनि समार उठी सो लंका, खड़ी हुई महाराज होश में आई, और होश में आने के बाद जो लंकिनी ने कहा वही हमारे आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। लंकिनी को एक ही बार में केवल हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, और उसके बाद लंकिनी ने कहा कि हे हनुमान, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये एक मुष्टिका के प्रहार का असर था कि रावण ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से बनाई गई एक ऐसी जो है रक्षा शक्ति जो रात दिन आसुरी विचारधारा में ही बहती थी, एक क्षण के अंदर केवल एक मुष्टिका के प्रहार मात्र से जो है उसके अंदर के संपूर्ण विवेक शक्ति का जागरण हो गया। किस प्रकार से हुआ वो महाराज उसकी भाषा बता रही है। लंकिनी कहती तात हे पुत्र हनुमान, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का संपूर्ण सुख है, स्वर्ग का सुख आपने अभी देखा तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते, स्वर्ग के सुख की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर केवल स्वर्ण हो, जहां पर कोई बीमारी ना हो, अस्वस्थता ना हो है, हर तरीके का सुख भोग उपलब्ध हो, इच्छा करते ही वो चीज उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार का जो परम सुख माना गया है, जहां पर कोई बीमारी नहीं है, जहां पर कोई जरावस्था नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, हर तरीके का सुख उपलब्ध है, तो जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऐसे सुख को, अगर पुराने जमाने का आजकल का डिजिटल तराजू नहीं, पुराने जमाने का जो तुला होता था जिसमें डंडी होती थी और दो पड़ले होते थे, तो लंकनी कहती कि एक पड़ले के ऊपर अगर जो है क्या रखा जाए, स्वर्ग का सुख रखा जाए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, केवल स्वर्ग का सुख ही नहीं अपवर्ग यानी मुक्ति का भी सुख रख दिया जाए, है ना। क्योंकि मुक्ति का भी जो परम सौभाग्य है वो किसी किसी को प्राप्त होता है, तो उस मुक्ति के सुख को भी अगर एक पड़ले में उसी स्वर्ग के सुख के संग रख दिया जाए, और उसके बाद दूसरी तरफ जो खाली है उसमें एक क्षण का सत्संग, लव सत्संग, कितना एक क्षण का सत्संग रख दिया जाए, तो महाराज वो बराबर नहीं हो पाएगा, बल्कि लव सत्संग नीचे ही रहेगा। एक क्षण के सत्संग के तुलना स्वर्ग का सुख अपवर्ग सुख दोनों से की गई है। जरा कल्पना कीजिए महाराज, एक मुष्टिका के प्रहार से जन्म जन्मांतरों का अज्ञान नष्ट हो गया और सत्संग के प्रभाव को उसने अनुभव किया कि एक क्षण का सत्संग हमको क्या दे सकता है। लव सत्संग की बात हो रही है, और आप लोग तो महाराज रोज कितना एक घंटा सुबह सत्संग करते हैं, उसके बाद फिर पौन घंटा क्या करते हैं स्वाध्याय करते हैं, और उसके बाद शाम को फिर सत्संग करते हैं। लेकिन बस समस्या ये है कि हमारा बुद्धि का ताला खुला या मुख्य समस्या तो वो है ना कि ताला खुलने वाली बात है। लंकिनी का ताला तो महाराज एक बार में खुल गया और उसको सत्संग की कीमत समझ में आ गई। क्यों भाई, है ना, अगर आपको अगर इंद्र के यहां से इन्विटेशन आए, क्यों भाई कि आपको हम स्वर्ग में एक बढ़िया फाइव स्टार कमरा देते हैं, वहां आ जाओ रहने के लिए एक हफ्ते, वहां जाना पसंद करोगे या सत्संग सुनना प्रेमपुरी में पसंद करोगे, क्यों भाई बोले महाराज पहले तो इंद्र भगवान को देखेंगे जाके कि होता कैसा है वहां का फाइव स्टार, है ना। नीचे के तो फाइव स्टार देख लिए महाराज, लेकिन ऊपर का अभी फाइव स्टार, स्वर्ग वाला फाइव स्टार नहीं देखा, इसलिए पहले तो वहां जाके देखेंगे प्रेमपुरी का सत्संग तो फिर मिल जाएगा, क्यों भाई। ज्यादातर कल्पना हमारी लगभग ऐसी ही होती है, क्योंकि ये संसार इतना आकर्षक है कि इसके आकर्षण से बच पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए स्वर्ग का सुख जिसके पीछे लालायित होकर सारा संसार भाग रहा है, और उसके बाद जो है अपवर्ग सुख है, फिर उसके बाद मुक्ति का लाभ है, तो हमारे यहां मुक्ति के लाभ को भी बंधन माना गया है ना। वेदांत कहता है कि न बंधन है न मुक्ति है, मुक्ति की चाहना भी चाहना ही है ना, तो मुक्ति की चाहना भी जहां अवरुद्ध हो जाती हो, ऐसा जो सत्संग है, ऐसी जो विवेक जागृति है, वो अलावा हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी हैं ही ऐसे महाराज, विशेष हमारे यहां का एक विशेष प्रारूप है महाराज हनुमान जी के रूप में, जहां पर तीन चीजें एक साथ उपलब्ध हो जाती है ना, जो बिल्कुल संसार में तो संभव ही नहीं देखा जाता है ना। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृषानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी को नमस्कार किया तुलसीदास जी, किस रूप में किया, बोले अतुलित बल धामम। सबसे बड़ी जो हमारे यहां दो चीजें हैं, एक है भौतिक जगत, तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भौतिक जगत का कोई लेश मात्र भी नहीं है, और हनुमान जी बिना राम के रह नहीं सकते, और राम जो है वो अपने अनिर्वचनीय रूप में है, तो ऐसे राम को भजने वाले हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, यानी जो जिसको हम लोग अंग्रेजी में ही कह सकते हैं फिजिकली फिट है ना। अध्यात्म की यदि आपको पूर्णतया प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले तो हनुमान जी का पहला गुण है अतुलित बल धाम, है ना, अपने भगवान को अपने आराध्य को अपने कंधे के ऊपर बैठा के ले जाते थे महाराज, अपने आराध्य को अपने दोनों कंधों के ऊपर बैठा के ले जाते थे, ऐसा उनका शारीरिक सौष्ठव था। तो अतुलित बल के धाम नंबर एक गुण। दूसरा गुण है महाराज सकल गुण निदानम, यानी कोई ऐसा गुण नहीं था जो हनुमान जी के अंदर नहीं था। सकल गुणों की खान, जितने सांसारिक गुण आप लोग अनुभव करते हैं कि कहां पर क्या चाहिए, ये हनुमान जी की विशेषता थी। इसीलिए आपने जब उनकी कथाओं को सुना या देखा टीवी में तो आपको देखने को मिलता है जहां ब्राह्मण बनना होता था वहां ब्राह्मण बन जाते थे, जहां मच्छर बनना होता था वहां मच्छर बन जाते थे, जहां विशाल शारीरिक उनको जो है अपना प्रदर्शन, कनक भूदराकार शरीरा समर भयंकर अतिबलवीरा, वहां पर विशाल हो जाते थे महाराज, अपनी पूंछ को बढ़ा सकते थे और वार्तालाप करने की जो उनकी शक्ति थी महाराज, ये गुण था। क्योंकि वार्तालाप करना भी सबके बस का नहीं है और इसीलिए जो है उनको भेजा गया और रावण के संग उन्होंने जो है वार्तालाप किया, क्योंकि रावण कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। रावण जो है चारों वेदों का महाराज ज्ञाता था, तो रावण के संग वार्तालाप करना भी कोई साधारण खेल नहीं था। तो हनुमान जी ऐसे विद्वान की वहां आवश्यकता थी, और दो चीजें कभी एक साथ नहीं देखी जाती कि अतुलित बल का धाम भी हो और विद्वान भी हो, दो चीजें कभी नहीं मिलेंगी आपको। या तो वो फिजिकली फिट मिलेगा और या फिर जो है वो बुद्धि से परिपूर्ण मिलेगा। आप वैज्ञानिकों को देखें जाके, अगर जो बहुत ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जब हम भगवान श्री राम ने हमारे धर्म रथ का वर्णन किया तो देखा गया कि आपके पास और हर मनुष्य के पास लगभग लगभग जो है एक प्रचंड शक्ति है जिसका नाम है बुद्धि, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर बुद्धि आपकी कुशल है तो बड़े से बड़े कठिनाइयों के सागर से भी आप पार हो जाओगे, और यदि आपको आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं है तो आपको छोटे से छोटा भी दुख का या सांसारिक गड्ढा पार होना मुश्किल हो जाता है। तो हनुमान जी जो हैं पूर्णतया जिसको कहते हैं बुद्धि के सागर, और बुद्धि की जब पराकाष्ठा वैज्ञानिकों ने देखी तो महाराज पता चला कि हमारी जो ब्रेन्स जो पावर है या बुद्धि शक्ति जो हमारी है, एक बहुत सांसारिक रूप से जीवन जीने वाला बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी है ना, आपने कंप्यूटर में एक शब्द सुना होगा बाइट्स, कितना नापते हैं ना बाइट्स में नापते हैं, है ना, पैमाना है ये कंप्यूटर साइंस में। तो केवल केवल और केवल मात्र बहुत से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति केवल 1% अपने ब्रेन का जिंदगी में इस्तेमाल करता है, कितना 100% में से 1%। और वैज्ञानिक जो रात दिन दिमाग ही खपाते हैं वो केवल 5% इस्तेमाल करते हैं, यानी 95% ब्रेन बेकार पड़ा रहता है। अब आप कल्पना कीजिए कि आपको कितनी ब्रेन पावर दी गई, कर सकते हैं कल्पना, कल्पना से परे चीज है। एक वैज्ञानिक जो रात दिन ऐसे ऐसे जो है पढ़ने वाले देखे जाते हैं महाराज, कि एक बार लाइब्रेरी में बंद हो गए तो 1-1 लाख किताबें पढ़ डाली एक बार, कितनी 1-1 लाख पुस्तक, कल्पना कीजिए जरा शक्ति कितनी है आपकी बुद्धि में, और इस हम ब्रेन पावर को या बुद्धि शक्ति को कितना इस्तेमाल करते हैं। तो हनुमान जी जो है पूर्ण बुद्धिमान है, यानी समय पर किस रूप को किस तरीके से कहां पर किस रूप का इस्तेमाल करना है, कहां पर किस तरीके से वार्तालाप करना है, और दोनों चीजें, एक तरफ तो बुद्धि का परम और दूसरी तरफ बल का परम है ना। जब आपने वैज्ञानिकों को देखिए जाके तो महाराज ऐसे वैज्ञानिक मिलेंगे जिनका शरीर ही बिल्कुल कैसा होगा ना, उनको चलाना पड़ता, उठाना पड़ता, बैठाना पड़ता, क्योंकि वो बुद्धि के अलावा दूसरा कोई काम ही करना नहीं जानते। और जो आपको बिल्कुल अखाड़े में लड़ने वाले हैं पहलवान मिलेंगे, उनसे आप बुद्धि की कोई बात करो तो वो समझ में नहीं आता उनको, क्योंकि उनके पास उसके लिए कोई टाइम है नहीं। वो रात दिन अपनी जो है फिजिक को यानी अपने भौतिक शरीर को ही ठीक करने में, खाने पीने में ही जो है लगे रहते हैं। तो लेकिन हनुमान जी दोनों गुणों के है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम अतुलित बलधामम। हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं परम बलशाली भी हो और बिल्कुल सचेत हो, है ना। क्योंकि परम बलशाली होने वाला फिर सचेत नहीं रह पाता। दो चीजें हैं, सचेत रहने की जो शक्ति है हनुमान जी की, ये सबके अंदर देखी नहीं जाती। हनुमान जी की जो विशेषताएं हैं, यही विशेषताएं महाराज, ये तो हो गए विशेष गुण, यानी सर्व गुणों के तो महाराज वो ज्ञाता हैं, अतुलित बल के धाम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, इसीलिए पूर्णिमा का दिन उनका माना गया। हमारे यहां तो अवतार है ना, अवतार का मतलब है कि निज इच्छा निर्मित प्रभु, जैसा उनकी इच्छा उसी रूप को धारण करते हैं अवतारी महापुरुष, क्योंकि वो माया से परे हैं। माया से परे जो ज्ञानवान होता है वो अपने रूप को स्वयं रचता है, तो और जिस दिन चाहे उस दिन प्रकट होता है। तो हनुमान जी पूर्णिमा के दिन आए और भगवान श्री राम नवमी के दिन आए, भाई होना होना क्या चाहिए। अगर आपको छूट दे दी जाए कि हनुमान जी और राम जी के जन्म का निर्धारण करो नवमी और पूर्णिमा में, तो राम को कौन सा दिन दोगे आप, क्यों जी पूर्णिमा दोगे कि नहीं दोगे। लेकिन यहां तो महाराज हनुमान जी का जन्म पूर्णिमा के दिन और भगवान राम का जन्म नवमी के दिन, ये है हमारे सनातन धर्म की विशेषता। ये तिथियां निर्धारित उनके अवतार के अपने अनुसार, क्योंकि वो अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं, जब चाहे तब अपने आप को रच सकते हैं। और हनुमान जी तो चिरंजीवी माने गए हैं माता भगवती सीता के माध्यम से, अजर अमर गुण निज सुत हो। सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी कि तुम जो है अजर अमर हो जाओ, और चिरंजीवी माने गए। तो बहुत से लोगों ने जो अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले शब्द, तो बहुत से लोगों ने जो है इसमें अभी चला है नया कुछ, उन्होंने कहा नहीं जन्मोत्सव मनाते हैं, हनुमान जी की जयंती नहीं मनाते। क्या मनाते हैं, हाँ क्यों मनाते हैं, बोले जयंती उसकी मनाई जाती है जिसकी मृत्यु होती है, और हनुमान जी जो हैं वो क्या हैं, चिरंजीवी हैं, इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये केवल अपनी एक समझ है। हनुमान जी को चाहे आप जयंती मनाओ तो और जन्मोत्सव मनाओ तो, हनुमान जी तो अमर थे और अमर हमारे आपके जयंती और जन्मोत्सव से वो बदलने वाले कि बदल जाएंगे, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी को पूर्णिमा का दिन इसीलिए दिया गया क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो परम पूर्णता को तभी प्राप्त होता है जब उसके अंदर दोनों चीजें समाविष्ट हो जाएं, यानी शारीरिक रूप से भी और बुद्धि रूप से भी, दोनों रूप से जब वो बलवान होता है तब उसको परमेश्वर समझ में आते हैं। अगर आप गुणों से रहित होकर, बुद्धि से रहित होकर और बल से रहित होकर, क्योंकि भगवान के प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो है सेवा, और बिना सेवा के भगवत भक्ति प्राप्त संभव नहीं है। तो सेवा के बगैर ये संभव नहीं, तो सेवा के लिए आपको चाहिए शरीर का स्वास्थ्य। तो जब तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा आप सेवा नहीं कर सकते हैं? और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा सेवा होगी, सेवा होने से आपकी बुद्धि जो है क्या होगी, शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि में भगवान की भक्ति सीधे क्या हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है। इसको कहते हैं भक्ति की पूर्णता। तो हनुमान जी जो है पूर्ण भक्त हैं, साधारण भक्त नहीं है। एक होता है साधारण भक्त, या तो महाराज जो है सांसारिक रूप से वो केवल सेवा करता दिखाई देगा, या फिर केवल जो है भगवान को भजता हुआ दिखाई देगा, या किसी प्रकार के अध्ययन से रत दिखाई देगा। लेकिन हनुमान जी संपूर्ण, क्योंकि स्वयं राम भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वेदज्ञ माना है, स्वयं जो है कई कई बार वेदों का अध्ययन करने वाले हनुमान जी, और कितने साधारण रूप में रहते हैं, जो हमको आपको समझना है आज के दिन, कि जो हनुमान जी वेदों के ज्ञाता हैं ऐसे वेदों के ज्ञाता हनुमान जी। मेरे ख्याल से यहां पर हम लोग बैठे हैं, वेदांत पढ़ते हैं, वेद का ही भाग है, लेकिन संपूर्ण वेदों का अध्ययन तो किसी ने हमारे में किया नहीं, किसी ने है? इतना समय नहीं है और ना उस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि चारों वेद आपको पढ़ाए जा सके या हम पढ़ सकें, और एक एक वेद की अन्य बहुत सारी शाखाएं हैं हमारे। तो ऐसे वेदों के ज्ञाता हनुमान जी को आपने भगवान राम के दरबार में किस रूप में देखा है? क्यों भाई है? जो भगवान श्री राम का दरबार का चित्र बनाया जाता है उसमें हनुमान जी कैसे बैठे हुए हैं? है? घुटनों के बल, जिसको हम लोग वीरासन कहते हैं, वीरासन में एक घुटना मुड़ा हुआ और एक घुटना नीचे लेटा हुआ, वीरासन बोलते हैं इसको। वीरासन का मतलब समझते हैं? नहीं है ना, वीरासन को भी तो समझना पड़ेगा। हमारा चित्र देख लिया हो गया, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमारे महावैज्ञानिक ऋषियों ने महाराज जैसे साधारण राम दरबार की कल्पना नहीं कर ली है ना। हाँ, ध्यान देना, वीरासन का मतलब एक पैर तो ऐसा खड़ा होता और एक पैर ऐसा लीच ऐसे होता ना। हाँ, यानी जिसको कहते हैं हाई अलर्ट स्थिति। वीरासन का मतलब कि कोई भी खतरा हमारे प्रभु के ऊपर आए तो उसके लिए वो कूद करके, हम गए बीकानेर, बीकानेर में करणी, राजा करणी सिंह का महल है हमारा। जब करणी सिंह के महल को देखने के लिए गए तो जहां पर वो लोग राजा लोग सोते थे, देख के आश्चर्य हुआ कि राजा करणी सिंह का महल है और उनकी पूर्व पीढ़ियां जो उस महल में रहती थीं, कितने सालों में वो महल बन के तैयार हुआ। और जब उनके लेटने के कमरे को देखा महाराज, आश्चर्य हुआ क्या राजा की का जीवन है। आपको मालूम आधा जो उनका पलंग है, आधा हम लोगों का जैसे पूरे पैर फैल जाते हैं, तो उनके घुटने से घुटने तक का तो उनका शरीर पलंग के ऊपर और बाकी घुटने से नीचे के पैर उनके जमीन में रहते थे। यानी जैसे ही कोई आक्रमण करने के लिए राजा आता था तो पलंग सहित खड़े हो जाते थे वो लोग। ये राजाओं का जीवन था हमारा, जरा सोचो कि आराम से वो, जिसको कहते हैं नहीं, घोड़े बेच के सोना है, घोड़े बेच के बेचारे सो भी नहीं सकते राजा, इतने अलर्ट रहते थे रात में। तो हनुमान जी को जो ये वीरासन दिया गया, ये मुख्य रूप से वीरासन इसी कार्य के लिए होता है कि प्रभु के ऊपर, स्वामी के ऊपर जब भी कोई खतरा उत्पन्न हो तो उसके लिए उनको तैयार होने में क्षणों में, क्योंकि सेकंड में चाहिए समय है ना। हम लोग तो आज जो है वो तैयार करते हैं, कितनी ट्रेनिंग दी जाती है किसको है, जिसको आप लोग जेट प्लस सिक्योरिटी बोलते हैं, है? कमांडोज जो तैयार किए जाते हैं महाराज, इतनी करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं बोलो। और वो हनुमान जी कौन से, चारों वेदों के ज्ञाता हनुमान जी और वीरासन में बैठे हुए हैं अपने स्वामी की रक्षा के लिए। ये आपने कहीं देखा है आज तक कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति हो और सेवा भाव के लिए इतना तत्पर हो? ये दो चीजें आपको कभी भी शायद ही कहीं पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितना जितना बुद्धि का विकास होता जाता है, बुद्धि की ओर आगे बढ़ता जाता, उतना ज्यादा अहंकार भी उसके ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता, सेवा भावना समाप्त हो जाती। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होने के बाद भी परम सेवक के रूप में हनुमान जी जो है भगवान श्री राम की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसलिए महाराज दो विशेषताएं प्राप्त हुई, भगवान श्री राम की नवमी एक बार आती है और हनुमान जयंती दो बार आती, क्योंकि थोड़ा सा भेद हो गया। दक्षिण भारत में किष्किंधा के थे ना हनुमान जी, तो दक्षिण भारत के अनुसार पूर्णिमा की तिथि है चैत्र पूर्णिमा, और जो है उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार हनुमान जयंती जो है 14 के दिन मनाई जाती है, यानी दिवाली से कार्तिक मास की जो 14 होती है उस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, अमावस्या एक दिन पूर्व है, जिसको आप लोग छोटी दिवाली बोलते हैं। तो उत्तर भारतीयों की मान्यता के अनुसार जन्मदिन वो है। तो इस जो है जिसको कहते हैं नहीं, संदेह का पूरा फायदा किसको मिला, हनुमान जी को मिला है ना। लोगों का जन्मदिन एक बार आता और हनुमान जी का दो बार आता है ना, क्योंकि भाई कुछ तो विशेषता मिलेगी। तो भगवान ने अपना जन्मदिन तो एक बार रखा और हनुमान जी को कितने दिए, दो दो बार आप हनुमान जयंती मनाते हैं, लेकिन किसके कारण? क्योंकि हनुमान जी की ये विशेषता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने के बाद भी, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी उनके अंदर जो सेवा का भाव है ये दर्शाता है महाराज कि वास्तविकता में हमारे जीवन में यदि अध्यात्म की पूर्णता है, ये जब तक हमारे अंदर पूर्णता नहीं होगी ये चीज संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर बुद्धि बल बढ़ेगा तो संग में अहंकार बढ़ेगा, है ना, और जब आपके अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो महाराज आप जो है अपने शारीरिक बल के अहंकार में आ जाओगे, तो दोनों समस्याएं आती हैं। यानी शारीरिक बल बढ़े तो वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, आपने देखा हो ना जिसका शरीर स्वस्थ रहता है वो बीमार आदमी को कुछ नहीं समझता, बोले हैं बेकार लेकिन जो बेचारा बीमार है वो शरीर स्वस्थ शरीर वाले को देखकर बोलता हाँ ऐसा होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जो है मुख्य ये हनुमान जी का जो विशेष लक्षण है, ज्ञानी जो उनकी विशेषता है, परम ज्ञानी रूप होने के बाद भी परम सेवक भाव जो हमारे आपके लिए अति आवश्यक है। यानी चाहे जितना अध्यात्म में आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन परम सेवा की भावना से हमको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिससे दो फायदे होंगे, एक तो देहाभिमान की समाप्ति, क्योंकि असली सारा खेल तो देहाभिमानी है। जो परम नश्वर है, क्षणिक है, ऐसा जो नश्वर और क्षणिक शारीरिक देहाभिमान है, जितनी जल्दी हम इसका परित्याग कर देंगे उतनी जल्दी ही आपको बोध हो जाएगा जो अभी नहीं है, है ना। क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं किसी को हो रहा अनुभव कि मैं अनंत हूं, अखंड हूं, मेरा कोई अंत नहीं है, मैं परमानंद की सीमा हूं, सारा आनंद मेरे अंदर से ही प्रकट होता है। अभी बंदूक लेके कोई खड़ा हो जाए सामने, मैं तुमको मारूंगा, आनंद रहेगा या दुख क्यों भाई, उस समय निकलेगा आम ब्रह्मास्मि, बोले तुम ही ब्रह्म हो यार, मैं नहीं हूं है? मेरी जान छोड़ दो। तो पता तभी चलता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। जब पूर्ण विपरीत परिस्थितियों में हनुमान जी की तरह महाराज, है ना, जैसे हनुमान जी परम ज्ञानी होने के अपने राम को जान चुके थे महाराज, नहीं तो अगर लंका के राजा रावण के दरबार में महाराज, बड़े बड़े राज्यों के राजा जाने में भी कांपते थे रावण के सामने, ऐसा उसका बाहुबल बुद्धिबल था, परम विकसित महाराज, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था देखो आप, मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता, जरा कल्पना कीजिए। तो ऐसा रावण महाराज उसके सामने जाने पर बड़े बड़े कांपने लगते थे, लेकिन हनुमान जी सहज होकर बैठे हुए हैं। ये तभी संभव है जब हमारी भक्ति हमारा ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होगा, जब हम राम को समझ पाएंगे। और जब तक आप राम को समझेंगे नहीं तब तक आपको ये पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, है ना। रावण तो रावण महाराज, अगर साधारण से किसी राज्य के राजा के सामने भी आपको, जो रात दिन हम पाकिस्तान को गाली देते हैं, हैं? हम लोग रात दिन पाकिस्तान बदमाश है ये वो, आज भी अगर उसके प्रधानमंत्री का दरबार लगा और आपको ले जाकर वहां बैठा दिया जाए कैसा फील करोगे, क्यों भाई, होगी कि नहीं हालत खराब? सोचो जरा, कल्पना करो, एक जरा सा देश, और कहीं अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठा दिया है तो हमारी हालत क्या होगी। और हनुमान जी ऐसी शक्तियों के सामने बड़े सहज और सरल रूप में बैठे हुए, कोई प्रभाव नहीं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर परम शक्ति का प्रभाव है। हम देहाभिमान के कारण, क्योंकि हमारी सारी सीमा रेखा देह है और देह से संबंधित पदार्थों में ही हम अपने अस्तित्व को तलाशते हैं, इसके कारण ही हमारी ये दशा है कि हमारे सामने अगर छोटा मोटा बड़ा व्यक्ति भी आ जाए तो हम उसके सामने थरथर थरथर कांपने लगेंगे। होता कि नहीं होता? अगर आपको किसी ऐसे विशेष व्यक्ति के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो आप अपने आप बहुत छोटा अनुभव करने लगे, इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। और हनुमान जी रावण के सामने बैठकर अनुभव कर रहे, तुमने कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं उसका जो है दूत हूं जो इस संसार को चलाता है, है? आप दूसरे के सामने खड़े होकर अपने जो आपकी अपनी सीमा है क्या क्या सीमा है, मेरा धन, मेरे संपत्तियों का जो रूप है वो सारा सब आप गिन डालते हो, उसके अनुसार सामने वाले के संग अपनी आप तुलना करते हो। अगर आप बड़े निकले तो आप उसके ऊपर हावी हो जाते हो, अगर आप उससे छोटे निकले तो आप उसके सामने सरेंडर कर देते हो, कांपने लगते हो। लेकिन हनुमान जी अपने आप को किसका दूत मानते हैं? कौन से राम? सब ही नचावत राम गुसाई और नाचत नर मरकट की नाही। ऐसे राम के दूत हैं हनुमान जी कि सारे जगत को और बंदर की तरह नचाने वाले राम के दूत इस संसार में संपूर्ण जीवों को महाराज बंदर की तरह नचाने वाले राम को पहचान जाने के कारण लंका के दरबार में प्रविष्ट होने पर भी हनुमान जी को किसी प्रकार की तुच्छता का या इंग्लिश में आप जिसको कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि साधारण समाज में साधारण बुद्धि में दो ही चीजें चलती हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी, दो ही चीजें तो हैं। यही हम समाज में लोगों के अंदर देखते हैं, कभी हम अपने आप को बड़ा अनुभव करते हैं, कभी हम आपको छोटा अनुभव करते हैं। ये किसके कारण होता है? ये देहाभिमान के कारण होता है महाराज। और जिस समय हम इन दोनों का परित्याग कर देते हैं और राम के हो जाते हैं, राम को पहचान लेते हैं, राम की शक्ति को जान लेते हैं, उस समय हम अपनी अखंड सत्ता का अनुभव करते हैं। तो हनुमान जी महाराज पूर्णता के प्रतीक हैं, इसलिए उनका जन्मदिन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है महाराज। अवतार हैं तो परम पूर्णता हमारे अंदर आए, यही हनुमान जयंती के दिन हम लोगों को क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी बल भी हो, बुद्धि भी हो, सजगता भी हो, हैं, अलर्टनेस जिसको कहते हैं, सजगता भी हो। और जब ये सारी चीजें एक हो जाएं, उसके बाद हमारे अंदर जो सबसे बड़ा गुण हो वो है सेवा भावना का। अंत तक हमारे अंदर सेवा भावना बनी रहे, यही प्रभु से बारंबार हमको क्या करनी चाहिए? विनती करनी चाहिए। तो आइए महाराज श्री के शब्दों का भी आनंद लें, उसके बाद जो आएंगे वो सतनाम जी जो है आनंद लीजिए, और अंत में जो है हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि जिसको सब लोग आ जाएंगे तो फिर हनुमान चालीसा के पाठ का पूरा पूर्ण आनंद आएगा। तो आइए महाराज श्री की वाणी का आनंद लें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजिश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् वादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि नमन। आज जिस निमित्त से हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं, विशेष पर्व है हनुमान जयंती। महाराज बताया हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जी का कोई भी आप चरित्र देखो, वैसे आप लोग ने भी वेदांत की कथा सुना, हमें तो लगता हनुमान जी वेदांत की साक्षात मूर्ति ही थे। हनुमान जी कैसे पात्र हैं रामायण में, रामचरितमानस में, कि मौन रह करके सब काम करते हैं। हनुमान जी बहुत बोलते नहीं है, आप देखना हनुमान जी का बहुत ज्यादा भाषण नहीं है। हम लोग तो भाषण देते हैं जीवन जीते कम है, लेकिन हनुमान जी महाराज जीवन जीते हैं, भाषण नहीं देते। बहुत कहीं नहीं उपदेश, बहुत कम ही उपदेश दिया। हमें लगता है एक ही उपदेश दिया है, किसको? रावण को उपदेश दिया। रावण ने जब हनुमान जी की बात नहीं मानी तो हनुमान जी ने उपदेश देने बंद कर दिया, क्या कर। अन्यथा देखो हनुमान जी महाराज एक पात्र को देख करके उस पात्र की कैसी योग्यता है, उस पात्र के लिए कौन सी साधना उपयोगी है, उसके लिए वैसी ही साधना बता करके उसको उस तत्व तक पहुंचाते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। पहला हनुमान जी के एक साधक है, पात्र हैं सुग्रीव महाराज। कौन है जानते हैं, पात्र से बहुत हमसे मुझसे अधिक तो रामायण आप लोग जानते होंगे। हमारा विषय तो ज्यादा रामायण कम ही रहा है, अध्यात्म रामायण पढ़ा हूं, तुलसीकृत रामायण मैंने बहुत कम अध्ययन किया या बहुत कम उस पर कथा किया, क्योंकि मैं गा नहीं सकता, जानते हैं आप लोग मेरे गाने का भी अपना एक रिकॉर्ड है। किसी ने बहुत आग्रह करते हैं कहीं भजन गा दो, तो गाँव में तो गा दिया, लेकिन एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा नाम भी है। आप लोग नहीं मालूम होगा कि आज तक दोबारा कभी फरमाइश नहीं आई है महाराज जी आप भजन गाओ ऐसा अपना भजन हो। एक बार गा दिया तो दोबारा कभी फरमाइश आती नहीं है, तो बताओ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है नहीं है। तो हनुमान जी महाराज के सामने जैसा पात्र होता है हनुमान जी महाराज उसको वैसी साधना बताते हैं। तो हनुमान जी के सामने पहले पात्र हैं कौन? सुग्रीव जी महाराज, जो राज्य की कामना से एक डरा हुआ इंसान, भागा हुआ इंसान, भयभीत इंसान। देखा जाए हम लोगों के भीतर भी कहीं न कहीं हम लोग भी भागे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो भोग की भीतर कामना भी है, राजा बनना भी चाहता है सुग्रीव, ऐसा नहीं है, राज्य की कामना भी है। तो ऐसे पात्र के लिए भय की निवृत्ति के लिए, साथ साथ भोग की भी प्राप्ति के लिए उन्होंने, हनुमान जी ने राम से दोस्ती कराई। पहला काम क्या किया है? मित्रता कराया है। किससे? राम जी से मित्रता कराने में सबसे बड़ा हाथ है किसका? हनुमान। यदि आप भी संसार से भागे हुए हो तो सच बताऊं आप भी राम से दोस्ती कर लो, आप भी अपने भीतर भगवान का भजन करना शुरू कर दो, भगवान का चिंतन करना शुरू कर दो, आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। महापुरुष लोग भजन गाते हैं, यह लोक सुखी है ना महाराज जी, क्या भजन है ऐसा है, यह लोक सुखी जो संत संग में लग गया, प्रभु संग में जो लग गया उसका यह लोक भी सुखी रहेगा और मरने के बाद परलोक भी सुखी ही रहेगा। तो एक पात्र ऐसे हैं, कौन है, सुग्रीव जी महाराज हैं, जो बेचारे डरे हुए हैं, राज्य भोग की भी कामना है लेकिन उनको कोई रास्ता मिलता नहीं है, तो उनको एक रास्ता दिखा देते हैं, तुम भगवान की तरफ लगो। तो संत भी यही, संत असली हनुमान ही संत के रूप में क्या है, वो हनुमान जी के रूप में कौन आते हैं, संत ही रहते हैं, ध्यान देना है। ए संसारियों को, जो संसारी लोग दुखी है, संसार से व्यथित है, राग द्वेष से युक्त है, उसका भी भाई से एक द्वेषी तो हो गया, कुछ पाना चाहता है पा नहीं पाता, उसकी भोग की सामग्रियां किसी दूसरे ने छीन लिया है, तो संत लोग आ करके उसको एक दिशा देते हैं, भगवान के भजन में लग जाओ, तुम ये अनुष्ठान करना शुरू कर दो, यह काम करना शुरू कर दो, तुम्हें स्वाभाविक ही उस भोग और साथ साथ तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होने के बाद तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो पहला साधक, पहला जो शिष्य है हनुमान जी का, वह कौन है, सुग्रीव है। अरे सुग्रीव की पूरी चर्चा जो सुनना है तो किष्किंधा कांड आप लोग अध्ययन करना, सुग्रीव ने कैसे कैसे दोस्ती किया, कैसे कैसे मारा, किसको, बाली को मारा, इसका भी वेदांत का रहस्य मैंने आपसे बताया भी था, याद होगा, आप लोग भूल जाते हैं, अच्छा होता है क्योंकि मुझे दोबारा बताने का मौका मिल जाता है। मैं एक बार पानी वहां था शाहबाद मारकंडा में, तो वहां किसी ने बोला मेरे से, एक वहां पंजाबी परिवार में बहुत अच्छी बात होती है कि जब बच्चा जन्म होता है ना तो भी संतों को बुलाते हैं, ये मैंने देखा, सूदक उदक कम देखते हैं लेकिन छठवें सातवें दिन जब बच्चा बाहर आते हैं तो पहली गोद भी संतों की गोद में डाल देते हैं, और पहला कपड़ा भी यदि बच्चे को पहनाते हैं ना तो संतों का ही कपड़ा पहनाते हैं, पंजाबी परिवार में मैंने देखा, पुराने कपड़े लेकर के उसको उसी में लपेटते हैं, और मृत्यु के अनंतर भी जब पगड़ी रस्म होती है तो वहां भी संत को बुलाते हैं। तो वहां किसी की मृत्यु हुई थी तो हमें बोलना था, तो सब वही बोलते हैं, आत्मा अजर अमर है, शरीर तो विनाशी है, जिसको जितने दिन रहना होगा उतने दिन रहेगा, चला जाएगा, सब लोग बोलते नहीं बोलते, भाई आप लोग यही उपदेश दोगे। एक प्रिंसिपल थे सरदार जी का, बब्बे बोलना आसान है, सीधे उनका शब्द था, बोलना आसान है, जिसके घर से कोई जाए ना तो उससे पता चलता उसको कितना गम है, सच बता रहा हूं उनकी बात है। राम ने जब बाली मर गया तो तारा को दीना ज्ञान हरलीनी माया, तारा को ज्ञान दिया और अज्ञान उनका समाप्त कर दिया कि तुम्हारा पति कौन था, शरीर था आत्मा था, यदि शरीर था तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, आत्मा है तो अजर और अमर है, तुम्हारा किससे प्यार था, तो ज्ञान दिया और उनका सारा अज्ञान समाप्त हो गया और आनंद में आ गई, कौन, वही धन, वही राम का भाई बेहोश हो गया, कहां, लंका में, तो रो रो के ज्यो जनते हूं हम बंधु बिछे हूं, पिता बचन मनते हूं नहीं हूं, यदि मैं जानता कि जंगल जाकर के मेरे भाई का विक्षोभ होगा तो मैं पिता की आज्ञा मान करके जंगल आता ही नहीं, हनुमान जी महाराज जी को परेशान कर दिया कि जाओ रातों रात तुम ले आओ संजीवनी बूटी और मेरे भाई को जिलाओ जिंदा करो, नहीं तो मैं किस मुंह से जाऊंगा अयोध्या। तो उस समय यदि कहीं तारा जैसे या प्रेमपुरी वाले कोई साधक होता अब राम जी को उपदेश देता, राम तुम्हारा भाई कौन था, शरीर था अथवा आत्मा था, शरीर है तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, आत्मा है तो अजर अमर है, ठीक है, कोई समाधान दिखता है आपको, बता, हाँ आप लोग एक एक बहाना है, भगवान की लीला है, तो भी लीला करके रो रही भैया, वो नहीं रोएगी किसे काम चलेगा भैया, लीला ही है तो सभी लीला ही है, संसारी लीला है, लेकिन भगवान ने अपने लिए तो जिंदा कर दिया बेचारा, उसका तो पति चला गया, भोग की सारी सामग्रियां चली गई, बड़ी मुश्किल है ना, तो इसका बड़ा बहुत रहस्य मैंने आपसे बताए थे, आपको याद होगा कि बाली था भोग का प्रतीक। बाली किसका प्रतीक है? भोग का प्रतीक है, ध्यान देना। भोग को भोग के सामने रह करके मारना चाहो तो भोग को मार नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। है बिरला कोई इंसान है, जनक जी जैसे हो सकते हैं, राम और कृष्ण जैसे हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम हमें शिक्षा देते हैं कि इसलिए बाली के सामने जो भी आता है ना उसका बल आधा हो जाता है। बड़ा से बड़ा बलशाली भी होवे और किसी तबाया वेश्या के पास जाए ना तो उसका सारा बल है, उसके चरणों का गुलाम बन जाता है, उसके चरणों का दास बन जाता है, सेवक बन जाता है। उसका बल कहां गया, शक्ति कहां गई, ताकत कहां चली गई। तो भोग के साथ रह करके भोक्ता का बल अपने आप ही गायब हो ही जाता है। तो भगवान राम शिक्षा देते हैं, यदि भोग को मारना है ना तो भोग से दूर रह करके भोग को मारना। कहां से? भोग इसे छिप के मारते हैं, दूर रह के मारते हैं। कहो महाराज जी कितना दूर रह सकते हैं? कभी कभी भोग का सामना करना भी पड़ेगा तो उस समय सुग्रीव बन के जाना। सुग्रीव जाते हैं बाली से लगने के लिए, तो भगवान राम ने कहा दोनों भाइयों की शकल एक जैसे थी, मैं सोचा कहीं मैं तीर चलाऊं बाली पे लग जाए सुग्रीव पे तो मित्र की हत्या का पाप लगेगा। अरे भगवान भी अंतर, तब भगवान की भगवत्ता भी कहां रह गई, अंतर्यामित्व तो कहां रह गया। अरे मौत भी आकर के पहचान लेती है किसको मारना है, सकल में वो भी कंफ्यूज नहीं करेगी। भगवान कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं? भगवान तो संशय से रहित हैं। भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, कभी भोग का मुकाबला करना न तो माला पहन के करना, लाल वस्त्र पहन के करना, चंदन लगा के जाना। आप भोग भोगना भी चाहोगे तो भोग भोग नहीं सकते हो। भाई अब लाल कपड़ा पहन करके मैं रास्ते में आऊं आइसक्रीम खाते हुए, आप बताओ क्या कहोगे? यहां से कथा सुन के जाओ, मैं उधर से आइसक्रीम खाते हुए आऊं, आप क्या कहोगे बताओ? आप हमें अच्छा कहोगे क्या? अच्छा आप खा लो तो आपको कोई मना करने वाला है क्या? ध्यान देना है, इन कपड़ों के साथ चंदन लगा करके आप गाली गलौज करो, कहीं गलत कुछ व्यसन करो तो तुरंत आपको रोक देगा कोई न कोई व्यक्ति। तो यदि भोग का मुकाबला करना भी है, ध्यान देना, तो उस समय क्या लगा लेना? चंदन लगा लेना, माला पहन लेना। तो यदि आपको राज्य में जाना भी पड़े, हनुमान जी बता दें वहां राम से दोस्ती होने के बाद भगवान राम ने सुग्रीव को एक रास्ता बताया कि यदि तुम्हें राज्य करना भी पड़े तो राज्य को एक सेवक की तरह है। उस राज्य का राजा मैं नहीं हूं, उस राज्य का भोक्ता मैं नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं। इस भाव से राज्य करोगे तो तुम्हें राज्य का बंधन तुम्हें बांधेगा नहीं, और इस बंधन के न बनने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध होकर के तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी एक तरीका है, एक व्यवहार में, एक मर्यादा में रहना, संसार में जाना एक मर्यादित व्यवहार होवे। पहले साधक हैं कौन? सुग्रीव जी महाराज। इनका अच्छा दूसरा चिंतन राम रोए क्यों वहां, तो बताए लक्ष्मण है वैराग्य। लक्ष्मण कौन है? राम वैराग्य है। हमारा कभी कभी वैराग्य शिथिल हो जाता है, कहां शिथिल पड़ेगा? लंका को देख करके। लंका कैसी लंका है? सोने की लंका। वो कहां है लंका सोने वाली? ये संसारी भाई सोने की लंका है, उसकी लंका की बात नहीं हो रहा है। ये संसार का पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य यही सबसे बड़ी क्या है? सोने की। अब कभी कभी हमारा वैराग्य इस लंका को देख करके शिथिल होता नहीं होता? भाई रास्ते में जा रहे थे, 10 रुपए मिल गए तो क्या हो जाता है? वैराग्य आ गया, गोलक में डाल दो, 1000 2000 के बंद हो गए, 2000 का नोट मिल गया तो भगवान ने बड़ी कृपा की है। दूसरा है लक्ष्मण क्या है? वैराग्य। तो हमारा भी वैराग्य देखो, भोग की प्राप्ति के बाद, ऐश्वर्य की प्राप्ति के बाद हमारा वैराग्य शिथिल होता नहीं होता? तो यदि आपका वैराग्य शिथिल हो जाए तो उस वैराग्य को जगाने का भी काम हनुमान जी करते हैं। संजीवनी बूटी लाने वाले कौन है? हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी के द्वारा ही हमारे भीतर का वैराग्य इसलिए वैराग्य की यदि साक्षात मूर्ति कोई है तो वह कौन है? हनुमान जी महाराज। जीवन में कोई उन्होंने संग्रह किया ही नहीं, अपने जीवन की रक्षा के लिए अथवा किसी भी प्रकार का हनुमान जी के जीवन कोई संग्रह है ही नहीं। तो यदि हनुमान जी का हम स्मरण करेंगे तो जीवन में हमारे भीतर एक वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य होगा तभी इस लंका से हम पार जा सकते हैं, अन्यथा लंका से पार जा नहीं सकते हैं। तो एक उसका भाव था, तो एक साधक है कौन है? सुग्रीव। और दूसरा साधक महाराज जी ने भी बताया है कौन? लंकिनी। कौन है? तो लंकिनी माने जो असुर वृत्ति वाला व्यक्ति होता है ना, उसको जब तक क्या करोगे, दंड नहीं दोगे, गुस्सा नहीं मारोगे, तब तक उसको अकल वाला, जब तक उसको मौत का भय नहीं दिखाओगे तब तक वह सत्संग में आने वाला है ही नहीं। इसलिए कभी कभी देखो व्यक्ति को मौत का भय दिखा करके व्यक्ति को सत्संग में लाया जाता है। संत लोग कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा शेठ था, वो सत्संग में लगता ही नहीं था। अब संतों के पास गया तो कहा भाई हाथ हो दिखाया, तो कहा बस 7 दिन तेरे पास टाइम है, 7 दिन जो कुछ करना हो कर ले, मौज मस्ती भोग जो भोगना भोग ले, 7 दिन के बाद तू मरेगा। अब घर जाते ही दान दक्षिणा पूजा पाठ सेवा सबको बुलाया, नाम ओम सब कर दिया। 7 दिन के बाद पूछा महाराज मौत तो आई नहीं? कहा 7 दिन तूने भजन तो नहीं किया? कहा भजन ही तो कर रहा था, और क्या कर रहा था, इस मौत के डर से मैं भजन ही तो कर रहा था। तो कहा तुम्हारे भजन के प्रभाव से ही तेरी मौत है, तेरे से दूर चली गई है, आगे बढ़ गई है। तो कम से कम मौत का डर दिखाया तभी तो उसने क्या किया, भजन किया कि नहीं किया? अब भजन से आपको मौत का भी भय समाप्त हो जाता है। तो लंकिनी को भी क्या दिया हनुमान जी ने? एक दंड दिखाया, मौत का भय दिखाया, ऐसा मुक्का मारा कि वो लंकिनी तो वहीं क्या की, घूम गई, और घूम करके बमन की, उसके भीतर ये संसार का जो भोग था, ऐश्वर्य था, जो कलमस था, वह भीतर का सारा कलमस निकल गया। उसको एक भगवान याद आया, मौत के समय भगवान। तो दूसरा साधक कौन है? जो असुर वृत्ति वाला व्यक्ति है, उसको तो बिना मौत का भय दिखाए, बिना दंड दिए वह साधना के रास्ते पर लग नहीं सकता है। तो दूसरे साधक कौन है बोलो भाई? लंकिनी है। तीसरे साधक हैं हनुमान जी के पास विभीषण महाराज। कौन है? जब सीता की खोज करते करते विभीषण के पास गए, तो विभीषण जी महाराज कितने सात्विक साधक हैं। कैसे साधक हैं? सात्विक साधक हैं। तो सात्विक जो साधना कर रहा है उसको सात्विक तरीके से भगवान को मिलाया, भगवान का एक पता बताया, कभी आवश्यकता पड़े तो तुम आ जाना। भगवान तो जो भगवान की शरण में आ जाए, दुश्मन का भी दुश्मन होवे तो भी भगवान उसके सैकड़ों अपराधों को क्षमा कर देते। जब जागो तभी सवेरा, तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा खुला ही हुआ है। और जब ये सुग्रीव वहां भगवान के पास जाता है तो भगवान से मिलाने का काम कौन कर रहे हैं वहां? हनुमान जी करते हैं। जबकि ये सुग्रीव आदि तो वहां हनुमान जी को कहते हैं कि इसको मारो, ये दुश्मन का भाई है, ये विश्वास पात्र नहीं है, लेकिन हनुमान जी ही उसका पक्ष लेकर के राम से मिलाते हैं। और चौथा हनुमान जी के साधक हैं रावण महाराज। रावण बड़ा विद्वान था, तो सोचा विद्वान को विद्वान की भाषा में ही समझाया जाए। तो हनुमान जी महाराज वहां रावण के पास गए, और रावण को बहुत बढ़िया, करीब अध्यात्म रामायण में एक अध्याय है जहां बहुत ज्ञान का उपदेश है। रावण तू अपने खानदान को याद तो कर, तू किस खानदान से पैदा हुआ है और तू घर में क्या कर रहा है? पुलस्त कुल में पैदा होकर के, ब्राह्मण में कुल में पैदा होकर के तू असुर जैसे कर्म कर रहा है, तो हमारे जैसे थोड़ा विवेकी व्यक्ति को, समझदार को भी उपदेश देने के लिए हनुमान जी कहते हैं हम सब के भी खानदान कौन है? देखा जाए हम लोग सबके गोत्र कौन है? सब ऋषि हैं भाई, कश्यप हैं, गर्ग हैं, गौतम हैं, सब हम सब ऋषियों की संतानें हैं। उन ऋषियों की संतानें हम, उन दधीची की संतानें हैं जिन्होंने दूसरे की सेवा के लिए अपनी हड्डी का भी त्याग कर दिया। हम उस शिवी के खानदान से हैं। जिस शिवि ने दूसरे की जान की रक्षा के लिए अपने सारे शरीर का मांस दे दिया। लेकिन हम लोग तो लगता है कि अपने उस खानदान की परंपरा को ही भूल गए और असुर जैसे ही कर्म करना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग अपने मूल को पहचानो रावण, और तुम सीता को लेकर के राम को सौंपो और भगवान का भजन करो। तो जो व्यक्ति जैसा साधक होता है और उसके लिए एक तरीका बताते हैं हे रावण, रावण के लिए एक साधना भी बताते हैं कि जो लंका है ना, इस लंका को जलाए बिना तुम राम के पास पहुंचोगे भी नहीं, और तुम लंका जलाओ, लंका तो मैं ही जला देता हूं। कौन सी लंका जलाया है? ये संसार रूपी लंका। जब तक ये संसार रूपी लंका जलेगी नहीं ना, तब तक तुम्हारा राज्य से मोह समाप्त नहीं होगा। राज्य से मोह नहीं समाप्त होगा ना, तब तक परमात्मा की प्राप्ति करोगे नहीं। एक बहुत अच्छा युक्ति था। दो बाज थे, दो बाज के पक्षी, दो बाज पक्षी थे बच्चे। किसी साधक ने, किसी व्यक्ति ने एक राजा को दिया, तो राजा ने उस बाज के पक्षियों को किसी सेवक को दे दिया कि तुम पालो और इसको मैं उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, इस बाज के पक्षी को उड़ता हुआ देखना चाहता हूं। तो कुछ दिन के बाद राजा गया तो एक पक्षी तो बड़ी अच्छी उड़ान उड़ रहा है, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ता है और उड़ करके फिर उसी डाल पर, एक डाल पर बैठ जाता है, उड़ता है फिर डाल पर बैठ जाता है। राजा के मन में संतोष नहीं हुआ। राजा तो चाहता था दोनों पक्षी इस बृहद आकाश में उड़ान भरें, उनको मैं उड़ना हुआ देखना चाहता हूं। राजा ने सब जगह ढूंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति इन दोनों बाज पक्षियों को आसमान में उड़ता हुआ वो करे, उसको मन चाहे इनाम मैं दूंगा। बड़े बड़े पक्षी के ट्रेनर आए, बड़े बड़े विचारक आए, लेकिन दूसरे पक्षी को उड़ाने में समर्थ हो ही नहीं पाए। राजा को बड़ी चिंता हो गई, आखिर एक ही खानदान के दो पक्षी, एक पक्षी इतनी लंबी उड़ान भर रहा है और दूसरा पक्षी वहीं चिपका हुआ है, एक डाल में चिपका हुआ है। कुछ दिनों के बाद एक किसान गया, उसने पक्षियों को देखा जो भी किया, और एक दिन राजा ने देखा कि दोनों पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। उसने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ? तो कहा एक किसान ने ये चमत्कार कर दिया। उस किसान को बुलाया इनाम के लिए। राजा ने कहा जितना इनाम चाहिए बता, लेकिन तूने चमत्कार कैसे कर दिया? बड़े बड़े पक्षी वैज्ञानिक आकर के फेल हो गए, लेकिन ऐसा ज्ञान? कहा राजन मैं ज्ञानवान क्या जानूं, मैं तो ठहरा किसान आदमी मूढ़ बुद्धि वाला। मैंने देखा बार बार पक्षी ना इसी डाल पे बैठता था, मैंने उस डाल को ही काट दिया। बस जिस डाल पे वो पक्षी बैठता था मैंने उस डाल को क्या किया? काट दिया। और जैसे डाल को काटा वो पक्षी क्या हुआ? अब उसको बैठने का कोई आश्रय नहीं मिला तो लौट के आएगा कहां? उड़ ही रहा है, उड़ गया और क्या हुआ? यही हालत हम सबकी है। हम सबकी जब तक लंका जलेगी नहीं, ध्यान देना। हनुमान जी जब हनुमान एक देखना अंतर्मुखी मन ही है। हनुमान किसके प्रतीक है? अंतर्मुखी मन। अंतर्मुखी मन ही इस संसार सागर से पार जाकर के इस संसार रूपी लंका को क्या करे? जला डाले। और जला डाले तभी उसको उस परमात्मा का आश्रय मिलेगा। नहीं तो हम कभी कभी परमात्मा को पकड़ते तो हैं, उड़ान भरते हैं, लेकिन फिर से कहां पकड़ लेते हैं? इसी संसार की डाल में आ जाते हैं, फिर उड़ते हैं थोड़ी देर के प्रेमपुरी आ जाते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं। कौन सी? संसार रूपी डाल को पकड़ लेते हैं। इसलिए कबीर ने इसी भाव से वो कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो आपनो चले हमारे साथ। तो घर नहीं जलाना है, मन से जलाना है। मन से कौन सी लंका को जलाना है? कौन सा घर जलाना है? इस संसार की लंका को जलाना है। और संसार की लंका को जलाने का मतलब क्या हुआ? संसार में, मन में जो संसार के प्रति महत्व बुद्धि है, संसार के प्रति जो हमारी सुखत बुद्धि है, उस सुखत बुद्धि का त्याग करोगे तभी हम उस परमात्मा की प्राप्ति, तभी हम उस उड़ान को उड़ पाएंगे। नहीं तो हम उड़ान में उड़ नहीं सकते हैं, हम फिर से चिपक जाएंगे किसी उसी डाल पे, पत्नी की डाल पर, पुत्र की डाल पे, धन की डाल पर, प्रतिष्ठा की डाल पर। ये सारी डालें हमें उलझाई हुई हैं, हमें यहां से उगने के लिए तैयार, उगने के लिए हमें ऊपर लेने जाती। तो उस डाल, मतलब उस व्यापक आसमान में उगने के लिए क्षमता चाहिए, वह क्षमता किसके पास है बोलो भाई? इसे देखो हनुमान जी सब यात्रा कर लेते हैं, जल मार्ग से भी चल लेते हैं, आकाश मार्ग से भी चल लेते हैं, संसार ये समुद्र भी संसार सागर से पार जाकर के संसार को जलाना है। जब तक हम संसार से पार नहीं जाएंगे संसार हमारा जल भी नहीं सकता है, और जब तक संसार जलेगा नहीं तब तक परमात्मा की प्राप्ति होगी। हनुमान जी का निश्चय पूछा, तुम आखिर हो कौन? हनुमान जी कहते देह दृष्टा तो दासो अस्मि, हे प्रभु शरीर की दृष्टि से देखो तो आप मालिक हैं, मैं आपका क्या हूं? सेवक हूं, दास हूं। सही बात, व्यवहार तो व्यवहार की तरह ही चलता है ना, आप पिता है, हम पुत्र हैं, व्यवहार तो व्यवहार की तरह, गुरु शिष्य वास्तव में एक है। सारा संसार में एक सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है नहीं, लेकिन शरीर में मैं बुद्धि करके विचार करता हूं तो हमें जो उपाधि मिली है उस उपाधि के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, आप मालिक हैं, हम सेवक हैं। जीव दृष्टिया तो दंशक, जीव दृष्टि से विचार करो तो प्रभु आपका एक मैं क्या हूं? अंश हूं, क्योंकि चैतन्य की परछाई अंतःकरण में पड़ी, जो चिदाभास हुआ उस चिदाभास की दृष्टि से हम क्या हो गए? एक है, आपके अंश हो गए। अरे आत्मदृष्टिया तो मैं वह हम, आत्मदृष्टि से विचार करो, परमार्थ दृष्टि से विचार करो, हे प्रभु जो आप हो वही मैं हूं, आप में और मेरे में कोई भेद है ही नहीं। इति में निश्चिता मति, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। ताप भी इसी बुद्धि का निश्चय लेके चलोगे ताप स्वयं हनुमान ही बन जाओगे, हनुमान की साधना करते करते हम स्वयं हनुमान बन जाएंगे। हनुमान से बहुत ज्यादा उपदेश सुना भी नहीं, हनुमान जी का एक ही उपदेश आता है, एक मुक्तिको उपनिषद है, कभी सुना होगा? सुना नहीं सुना है कभी? मुक्तिको उपनिषद है, वहां भगवान श्री राम ने मुक्तिको उपनिषद का श्रवण कराया किसको? हनुमान जी को। वहां हनुमान जी साधक है, तो कभी आप लोगों को यहां मौका मिले तो इस उपनिषद को पढ़ना, तो हनुमान जी का पूरा ज्ञान, जो ज्ञानी नामक ऋगण्यम थे, सकल गुण धानम थे, आप भी उस उपनिषद का अध्ययन करके उस उपनिषद का आत्मसात कर लेना, तो आप भी हनुमान जी की तरह। अब बलशाली का मतलब भी हुआ इंद्रियों को जो जीत लेवे, इंद्रियां जिसके अपने बस में होवे वही सबसे बड़ा बलशाली है। हनुमान जी वो बल को प्राप्त किए हैं जो इंद्रियों के गुलाम नहीं बने हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज आप सब पर भी कृपा करें, आपके भीतर सेवा की भावना पैदा करें, त्याग की भावना पैदा करें, और आप सबको ज्ञान से युक्त करें। हनुमान जी का ज्ञान भी देखना होवे तो वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड देखना, हनुमान जी ने क्या क्या विचार वहां किया है, जब सीता नहीं मिली है तो किन किन विचारों से, अवसाद से भी हनुमान जी निकले। एक बार हनुमान जी सोचा आप हत्या कर लो, सत्यता वहां देखना वाल्मीकि रामायण में, लेकिन हनुमान जी सोचते यार हत्या कर लिया तो मेरे बिना सीता के पता, बिना राम की मृत्यु, राम के बिना लक्ष्मण की मृत्यु, पूरी अयोध्या के विनाश का कारण मैं होऊंगा, खोज करनी चाहिए। दोबारा तिबारा खोजने गए, अंत में उन्हें सीता का पता मिल ही गया। तो कभी भी विकट परिस्थितियों में भी जीवन में कभी निराश न होना, यदि ये भी सीखना है तो हमें किस चरित्र से सीखें? हनुमान जी के चरित्र से। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हम जानते हैं आप लोग बहुत संगीत का आनंद लेने के लिए विराजमान हैं।
थोड़ा गाऊंगा, थोड़ा, ज्यादा गाने की आदत नहीं है, लिटिल बिट। वैसे सच में बात यह है तो मैं मुझे लगता है गाना मेरा काम नहीं है और मैं कम गाता हूं, बहुत बहुत रेयर, कहीं फंस जाऊं कहीं। जैसे मैं स्वामी महानंद जी को मिलने आया था, उनके लिए आया था, तो मुझे मालूम नहीं था वो ऐसे फंसा देंगे मुझे, क्योंकि जहां बातें बंद हो जाती हैं, अगर बातों से बात बनती तो बात क्या थी, अगर बातों से बात बनती तो बात क्या थी। जहां आके बंद ही हो जाता है सब कुछ, शायद वो ही सत चित आनंद है। जैसे हमारे गुरुद्वारे में कहते हैं ना, सा बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जो बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। क्या सत, क्योंकि सत ही श्री है और श्री जो है वो अकाल है। हम लोग जो भी बोलते हैं, जो भी गाते हैं, जो भी बजाते हैं, जो भी करते हैं, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं भी गलती हूं, हो सकता है सत से हटके करना चाहते हैं। और मुझे सुबह 7:30 का टाइम दिया था, तो जब 8 बज गए ना तो मैं खाना शुरू कर दिया। मैं कहा यार बड़ी खुश हुई, अब वो आएंगे नहीं, मैं कहा अब नहीं आएंगे मुझे बुलाने, घर चाय बना, अब कब मजा लेते। तो जब यही हुआ तो आ गए आप। तो मैं जो मैं सोचता हूं, भगवान ने तो सबको इतना, मेरे हिसाब से तो भगवान ने दे ही सबको समय दिया है, अब संभालना नहीं आता, क्या करें। खुदा ने तो दिया सबको जी भर के, किसी को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है, सबको दिया है। इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया कि रमान पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे भगवान रामचंद्र जी ने हम ही तो दे दिया सब कुछ, शरीर दे दिया, मन दे दिया, तन दे दिया, गाड़ी दे दी। अरे बस ये सोना ही है, अब चुप करके, सोना नहीं आता किसी को, खोना तो आता है, सोना नहीं आता। और एक बड़ा अच्छा, जैसे राग वैरागी था ये, उसमें वैराग भी झलकता है ना, ऐसी राग योगिया है। और योगिया राग भी बहुत अच्छा राग है।
पिया के मिलन की आस, छिन्न छिन्न कजरा बहत मैया के मिलन की आस मिलन की आस पिया के पिया के मिलन की आस मिलन की आस पिया के छिन कजरा बहत जो बनवा जो मैं जाऊं पिया पास पिया के मिलन की आस धन धन भागवा के सजनी पिया के मिलन की आस पिया के मिलन की